गुरुदेव's address is started.
Hello.
We can't hear Sri Gurudev.
Hello. Tatpashchat Shriman Sri Dandipat Vaishnav or Vaishnavi. हम बंधन लीला के संबंध से दिखाया प्रेम से ही वो बनते हैं, इसलिए अंग्रेजी में भी कहा है गॉड इज लव, लव इज गॉड. इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए. यदि भगवान को कोई चाहता है जो वो मिले, तो या तो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य या मधुर, किसी एक रेशा संबंध हो होकर के कृष्ण को अपना पुत्र सखा प्रियतम मान का भजन करना चाहिए. और उन सब में प्रियतम का भाव गोपियों का जैसा था यही श्रेष्ठ है. इसी भक्ति के द्वारा कृष्ण की संसार में वशीभूत भी होते हैं और गोलोक वृंदावन में वह भक्त उसी रूप में सेवा प्राप्त करता है. इस प्रेम बंधन के कारण ही उनका नाम दामोदर बन गया. इसके दाम में उधर है. जब वो गैया चराते तो उनका नाम गोपाल हो गया. गिरराजी को उठाया तो नाम गिरधारी हो गया. जब इंद्र को दमन किया, उनका घमंड चूर्ण विचूर्ण किया तो उनका नाम गोविंद हो गया. जब राष्ट्र में राष्ट्र किया तब राष्ट्र बिहार, उनका नाम राष्ट्र बिहारी हो गया। इसी तरह से जब जब उन्होंने यशोदा की गोद में रहने से यशोदा नंदन, नंद बाबा की गोद में रहने से नंदनंदन, इसी तरह से उनके हजारों नाम हुए। कोई कोई उनको काला ही कहते थे, गोपियां काला कहती थी, कृष्ण नहीं कहती थी। उसी का ध्वंस हो गया काना और उसका ध्वंस कन्हैया हो गया। कोई भी नाम कृष्ण को बड़े प्रिय है। इन लीलाओं का स्मरण, लीलाओं का कीर्तन और उनकी लीलाओं के साथ में उन नामों का क्या संबंध है, उसका स्मरण करके हुए वृंदावन में जदि रहे और नहीं तो मन से भी रहकर वैष्णव और गुरु के अनुगत्य में भजन करना चाहिए। यही समस्त उपदेशों का सार है। इस प्रकार से वृंदावन में तरह तरह की लीलाओं से गोकुल के ब्रजवासियों को प्रेम रूपी समुद्र में डुबाते हुए लीलाएं करने लगे। मथुरा में एक फल बेचने वाली थी, फल बिक्रयणी, वो इधर उधर सुनती थी गोकुल में नंद बाबा को एक लाला हुआ है, बड़ा अल्पेला है, बड़ा सुंदर है और नई नई लीलाएं करता है, इधर उधर बड़ा चंचल है। गोपियां उनको दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आती हैं। कभी कहती है जो आखिर बल से लड़ो, जो लड़े जीतेगा हम लड्डू दे देंगी। तो दोनों ताल ठोक करके लड़ने लगते। तो अच्छा चल कृष्ण, तुम यदि गान करेगा तो लड्डू देंगे। तो कृष्ण एक हाथ यहाँ रख करके और एक कान पर एक इस प्रकार से आलाप करने लगे। इन लीलाओं को सुन करके उसका चित्त मुग्ध हो गया। मैं भी यशोदा नंदन का, नंद बाबा के लाला का दर्शन करूंगी। ऐसा विचार करके उसने अपनी टोकरी को बड़े बड़े मीठे सुंदर आम अमरूद केले इत्यादि फलों से भर दिया और गोकुल में गई। और नंद बाबा के मन के चारों तरफ में आवाज लगाने लगी, फल्लो फल्लो, जिसे कि कृष्ण सुन करके दौड़े हुए आएंगे, उनका दर्शन हो जाएगा। तो कृष्ण आग्रह और बढ़ाने के लिए जल्दी नहीं दर्शन देते हैं। कभी कृष्ण नारद जी को दर्शन दिया, एक क्षण के लिए दिया आग्रह बढ़ाने के लिए, फिर नहीं दिया। प्रहलाद महाराज जी को भी दर्शन दिया क्षण मात्र के लिए, इसलिए आग्रह बढ़ाने के लिए दो एक दिन गई। किंतु किसी प्रकार से कृष्ण का दर्शन कभी सोते हुए मिलते, कभी कुछ नहीं दर्शन मिला। आज तो ठान करके गई मन में, आज तो किसी न किसी प्रकार से दर्शन करके ही लौटूंगी, और ये सब विचार करके गोकुल में गई। कृष्ण लो कृष्ण लो, फल्लो फल्लो कहने लगी, किंतु वो ऐसे आविष्ट हो गई, फल्लो फल्लो छूट गया। गोविंद लो, गोपाल लो, कृष्ण लो, दामोदर लो, और हाथ भी छूट गया टोकरी से। और इस प्रकार बावरी होकर के जब करने लगी तो कृष्ण से रहा नहीं गया, जो सुधा मैया की गोद में थे, अभी तो बिल्कुल नंगे ही दौड़ते थे। उठ करके उन्होंने गेहूं की राशि पड़ी थी, वहां से एक अंजलि, छोटी सी अंजलि, उसमें एक अंजलि गेहूं उठा लिया, और वो भी चलते चलते दरवाजे तक जाते जाते इधर से उधर से सब गिर गया। दो चार यहाँ पर दाने रह गए और बाकी सब गिर गया। वहां जाकर के देखा तो मल दिख रही है, दरवाजे पर बैठी है, भीतर अंदर मल में नहीं आ सकती क्योंकि नीच जाति की, पहले ऐसे विचार था, बारी बैठी थी। कृष्ण का अद्भुत रूप लावण्य देख करके मुग्ध हो गई। कृष्ण ने कहा फल दो फल दो, और ये कहते हुए अपने हाथ में दो चार जो दाने थे उसमें टोकरी में छोड़ दिया और फल दो फल दो। फल दिख रहे नहीं ने कहा ऐसे फल नहीं, हमारे फल बड़े मीठे मीठे सुंदर हैं, तुम हमारी गोद में बैठ जाओ और एक बार मैया कह दो। और फिर बहन जी ने भर करके अमरूद आम जो चाहोगे सब दे दूंगी। कृष्ण ने देखा जे कोई व्यक्ति तो इधर आसपास नहीं है, इधर देखा जे कोई नहीं है, एक सेकंड के अंदर में बैठे झट और बैठ करके झट कूट करके मैया एक बार कह दिया और बस फल दो। अब तो वे बेचारी मुक्त हो गई और उनकी अंजलि में कितने फल आएंगे, एक दो आम देने से ही वो भर जाएगा, कि कितना हो सका फल विक्रमी ने उनके हाथों में दे दिया वो इस प्रकार से लेकर के और उसके तरफ में देख करके उसके मन को चोरी करके और यशोदा मैया के यहाँ लौट गए और उनकी अंचल में वो सब फल दे दिए। अरे कहाँ से इतना सुंदर फल सब ले आया और बांटने लगी, जितनी गोपियां थी वो कम नहीं पड़ा, जितनी देती गई बढ़ता गया वो, और जिसने देखा उसका सुगंध और मधु। अब तो फल बिखरे नहीं, वहीं पर बैठी की बैठी रह गई, आंख जो खुली थी बंद करके और वही रूप उसके हृदय में बस घूमने लगा। जब बहुत देर हो गई तो कोई ब्रिजवासी आए आई, अरे क्या कर रही है यहाँ पर बैठ करके, अकेले बैठी हुई क्या कर रही है। तो जब झोरा तो फिर उसको याद आई, टोकरी से पर उठाया और चल पड़ी। गोकुल और मथुरा के बीच में यमुना नदी है, जब उसके किनारे पहुंची तो देखिए मैंने सब फल तो निकाल करके दे दिए थे किंतु ये भारी किस लिए लग रही। नीचे उतार कर देखा उसकी टोकरी रत्नों से भरी हुई है, जवाहरात हीरे सोने इत्यादि से एकदम भरा हुआ। देख करके आश्चर्य, इतना कहां से आ गया, अब मुझसे इससे क्या जरूरत। जिसको कृष्ण का प्रेम हो जाता है, संसार का वैभव राज्य स्वर्ग का सुख मुक्ति सुख कुछ भी नहीं सुहाता, कोई भी चीज में उसका मन रम नहीं सकता कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त, इसलिए वो तो उसको तो वैराग्य हो गया, बस टोकरी उठा करके यमुना में फेंक दिया और कहां गई घर नहीं लौटी। घर नहीं के लौटी मतलब क्या, उस प्रेम में भी शोध होकर के बस कृष्ण में ही मिलकर उनके भाग चली गई। जबकि कृष्ण ने पुतला को जो कि विष देकर लेकर के आई थी मरने की नीयत से, माता का केवल वेश बनाया और उसको धातृ उचित मातृ उचित गति दे दी, अब इस हल्दी क्रैनी को क्या देंगे जिसकी गोदी में बैठ गए मैया था और वो मां के रूप में सचमुच मां जैसे ही व्यवहार किया, उसको कृष्ण क्या दे सकते हैं। वही उसको तो मातृ जैसी गति दी और वो भी गोलोक में, और इसको वृंदावन धाम में यशोदा जी की पड़ोसी के रूप में जन्म दिया होगा, जो कृष्ण को सब समय अब आदर के साथ में खिलाती खिलाती होगी। इस श्लोक से इति स्वलीला वीरानंद कुंडे, इस प्रकार से आनंद के समुद्र में ब्रजवासियों को डुबाते हुए कृष्ण लीला तरह तरह की लीलाएं करने लगे। ब्रजवासी लोग मुक्त हो जाते थे। इस प्रकार से उनकी बाल्यलीलाओं में इतना, जबकि आप लोगों को सुनने में और मुझे कहने में आनंद होता है, तो जो साक्षात रूप से उनको देखती थी, उनकी लीलाओं में संलग्न रहती थी, उनकी क्या विचित्र दशा हुआ होगा। हम लोग अब तो कल ही का दिन बाकी है, इसलिए संक्षेप में ही हम बतला रहे हैं। हम लोग इसके बाद में उन्होंने बहुत सी लीलाएं की, उसमें एक प्रधान धनकासुर को मारा, बलदेव जी ने मारा, ये गुरु है। धेनुका मने गधा, वो नारियल के पेड़ों की रक्षा करता था बगीचे की, और नारियल भेजता था पका हुआ कंस को, और वो उसके परिवार वाले सभी उसकी रक्षा करते थे, जो कोई जाता मार डालते। फातो असुर किंतु गधे का रूप धारण करता। तब सखाओं ने कहा कि हम भी पके हुए नारियल का फल खाएंगे। बलदेव जी उनको और कृष्ण ले करके गए, ठीक है, गए और ठीक है चलो जाओ गए। और उस समय में बलदेव जी ने उस गधे का पिछला पैर पकड़ करके उसके पैर पर भी मारा। बलदेव जी गुरु तत्व है, गधा माने मूर्ख, जो भगवत तत्व नहीं जानते, भगवान का विरोध करते हैं। बलदेव प्रभु जी उस अज्ञानता को दूर करते हैं। अभी आप लोगों को अघासुर को मोक्ष दान, और उसको देख करके ब्रह्मा को कुछ लीला देखने की इच्छा हुई। उन्होंने किस प्रकार से लीला को दिखाया, उसके संबंध में श्री सिमांतिस्थ महाराज जी कुछ बोलेंगे।
बोल रहे तो कृष्ण कृपा जी तुम बोलो पहले।
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
बड़े सौभाग्य की बात है आप लोगों के इस जम्मू शहर में आप लोगों के समक्ष गुरुजी यहाँ पर पधारे हैं, और उनके साथ वैष्णव लोग भी पधारे हैं। कहते हैं जहाँ पर भगवान के शुद्ध भक्त विराजमान हो, वहाँ पर भगवान आए बिना रह नहीं सकते हैं। तो ये साक्षात हम यहाँ पर देख रहे हैं, भगवान के परिकर भगवान के शुद्ध भक्त यहाँ पर विराजमान हैं, और आप लोगों के समक्ष यहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन भी विराजमान हैं। बोलो गिरिराज गोवर्धन जी की, गुरु महाराज की जय। इसलिए जहाँ पर भगवान विराजमान हो और भगवान के भक्त विराजमान हो, वह स्थान कैसा कहलाया जाता है, बोलते वह स्थान अत्यंत अत्यंत पवित्र वैकुंठ लोक कहलाया जाता है। जहाँ पर हम गुरु जी के मुख से भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। कैसी लीलाओं को? बोलते हैं भगवान की वो लीलाएं जो उन्होंने अपने अत्यंत अत्यंत निकटवर्ती अपने परिकरों के साथ जो ब्रज गोलोक वृंदावन में जो लीलाएं की हैं, उन लीलाओं को हम श्रवण कर रहे हैं। ये लीलाओं को सुनना, इन लीलाओं को सुनने के लिए बहुत भाग्य की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग परम परम सौभाग्यशाली हो कि ये सब लीलाओं को गुरु जी के मुख से श्रवण कर रहे हैं। भगवान कृष्णचंद्र जो कि सभी ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण है, जहां तक ऐश्वर्य पर लीला की बात है, वह लीला भी वह वैकुंठ आदि लोकों में करते हैं, परंतु जहां पर ब्रज वृंदावन की बात है, वहां पर जैसे हम एक दो दिन से सुन रहे हैं, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता है। जैसे आप लोग को माताएं हैं, आपका ही पुत्र यदि इस जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर हो, जब वो ऑफिस जाएंगे तो सारे लोग उनको सलूट मारेंगे, साथ साथ करके बात करेंगे, परंतु जब वो घर लौट के आते हैं, क्या आप उनको सलूट मारते हो? नहीं। क्यों? ये आपका घर है, आपके साथ उनका कैसा संबंध है? बोलते हैं आत्म का संबंध है। वो किसी के पुत्र हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण जब वृंदावन की में लीला करते हैं, तो वो लीलाएं कैसे होती हैं? जैसे अपने घर में, अपने परिवार में ही करते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता है। हमने कल बाल्य लीलाओं को श्रवण किया, कैसे यशोदा मैया कृष्ण को उठाकर नीचे उपटक के रख देती हैं, बोलते भगवान को ऐसे रख देती हैं, जिस भगवान की पूजा सारा जगत करता है, जिस भगवान का सब सब करते हैं, जो बड़े बड़े देवता लोग आकर अपने मस्तक के मुकुट से उनकी चौकी पर अपने मस्तक को झुकाते हैं, उन भगवान को यशोदा मैया उठाकर रख देती हैं। वो तो ये वास्तव में रस की लीलाएं हैं। इसी प्रकार सखा लोग भी कृष्ण के साथ जब खेलते हैं, उनमें ये विचार होता है कि हम भगवान के साथ खेल रहे हैं। किसके साथ खेल रहे हैं? वो ये हमारा सखा है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा दोस्त है। जैसे हम इस जगत में ही देखते हैं, हमारा कोई मित्र होता है, उसके साथ हम तू तड़ाक से बात करते हैं, कहाँ जा रहा है, इधर आ, क्योंकि उसमें संकोच नहीं होता है। इसी प्रकार ब्रज में जो कृष्ण के सखा लोग हैं, वो भी कृष्ण को कहते हैं, तुम कौन से बड़े लोग हो? तुम कोई बड़े हो? हम और तुम एक बराबर हैं। तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो, हम तुम्हारे से ज्यादा बलवान हैं। इसलिए कृष्ण और सभी सखा लोग मिलकर परस्पर एक दूसरे के साथ ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं करते हैं, जिसमें सखाओं को भी आनंद होता है और कृष्ण को भी आनंद होता है। कहते हैं केचित बेनु वद्यांतो धमांता सिंहानी केचित केचि भंगे प्रधानवंतो कुंजित कोकिल पारे विकसंत भी प्रादुवंतो गच्छन्ति साधु हमसक। गच्छन्ति साधु हमसक विलंगते परि नित्यस्त कलापि भी विकर्षित व कील बलान आरोह से दम ध्रुवाम विकर्षमत सकाम प्लावस्त प्लाशिशु इतम सकाम ब्रह्म सुखना भूतया मायाम दस्तनम गतानम पर देवतेना माया आश्रिताम नर दारकेना तताम कृतम कृत पुण्य पुंजा। बोलते कभी तो ये श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है जिसमें बताते हैं कैसे कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हैं। कभी तो कृष्ण वेणु बजाते हैं और उनको देखकर सारे सखा लोग भी वेणु बजाने लग जाते हैं। बताया ना, बराबरी का संबंध है। क्या तुम ही वेणु बजा सकते हो, हम नहीं बजा सकते, इसलिए सखा लोग भी बजाने लग जाते हैं। ये जी भृंगे प्रधानमंत्री तो कभी कभी श्रृंग बजाने लग जाते हैं जिससे गैया को पुकारते हैं, सखा लोग भी बजाने लग जाते हैं। कभी कभी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ सखा जैसे मधुमक्खी करके चलती है, सखा भी उसकी तरह आवाज निकालते हुए मधुमक्खी के पीछे 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 भागते हैं। कभी सखा लोग देखते हैं, ओ एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी छाया भी, उसकी छाया जमीन पर चलती है, सखा लोग उस छाया को पकड़ने के लिए पीछे 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 भागते हैं। कभी देखते हैं सामने एक मयूर नृत्य कर रहा है तो सखा लोग भी मयूर के साथ नृत्य करने लग जाते हैं। पानी में देखते हैं एक मेंढक उछल रहा है तो सखा भी अपने आप को मेंढक का रूप धारण करके अर्थात अपने हाथों को पैर पर रखकर उछल उछल कर ऐसे चल के दिखाते हैं। देखा एक वृक्ष की डाल से एक बंदर दूसरे वृक्ष पर छलांग लगा रहा है तो सखा भी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और चढ़ने पर एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाने लग गया। ये देखकर बंदर थोड़ा नाराज हुआ और ऐसे घूरने को आया तो सखा भी उनके सामने ऐसे घूरने को आया। ये देखकर कृष्ण बड़े ही आनंदित हो रहे हैं कि कैसे मेरे सखा लोग किस प्रकार से पक्षियों का, बंदरों का और मेंढक की नकल उतार रहे हैं। पानी में देखकर सखा लोग जोर से चिल्लाने लगे। अब वो चिल्लाने की आवाज वापस उनके पास आई तो देखने लगे, अरे ये पानी के अंदर कौन बोल रहा है। फिर दोबारा से आवाज लगाने लगे, फिर दोबारा वहां से आवाज निकलने लग गई। बोलते हैं इस प्रकार इन सखाओं के कैसा भाग्य है, इन्होंने कौन से सुकृतियों को इकट्ठा किया है कि जिस कृष्ण को दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग ध्यान में, अपने ध्यान में उनको लाने की चेष्टा करते हैं। जो भगवान के दास हैं वो उनको बहुत बड़ा करके मानते हैं, उनको अपना स्वामी करके मानते हैं और माया में जो पड़े हुए हैं वो उनको क्या मानते हैं, एक साधारण एक व्यक्ति है, ये भगवान नहीं है। बोलते ऐसे सखा जब वन में कृष्ण के साथ इस प्रकार से लीला कर रहे हैं, लीला करते 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 उन्होंने दूर में देखा एक बहुत बड़ी एक गुफा नजर आने लगी। एक सखा दूसरे सखे से कहने लगा, ये कोई गुफा है ना कोई सांप है, देखने में तो सांप जैसा लग रहा है परंतु इतना बड़ा सांप, उसका मुंह इतना बड़ा खुला हुआ है। अब सखा लोग हैं एक दूसरे से मजाक करना, हंसी मजाक करना, यही उनका स्वभाव है। सखा कहने लगे, भाई देखो तो सही इस सांप के दांत हैं कि नहीं। अच्छा अगर इसके दांत हैं तो इसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा। सांप के अंदर प्रवेश करने लगे, वह सांप कौन था, अगासुर। इसको कंस ने भेजा था कि जाओ तुम्हारी बहन पूतना का वध किया है कृष्ण ने, इसलिए अपनी बहन का वध का बदला लेने के लिए तुम ब्रज में जाओ और कृष्ण को समाप्त कर दो। सखा लोग एक एक करके उस सर्प की जीवा के द्वारा अंदर प्रवेश करने लगे, खेल खेल नहीं, देखने लगे कि ओहो इसके दांत है कि नहीं है, देखे तो सही। जब सब सखा लोग अंदर पहुंच गए, जाकर देखने लगे दांत वांत तो नजर नहीं आ, ये कोई विचित्र सा कोई प्राणी लग रहा है। कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति ने उस समय कृष्ण को ज्ञात कराया कि प्रभु देखिए आपके सखा कहाँ प्रवेश कर रहे हैं। कृष्ण की दो शक्तियां सब समय कृष्ण के साथ उनकी सेवाएं करती हैं, मुग्धता और सर्वज्ञता। लीला शक्ति कभी कभी कृष्ण को भुला देती है कि आप भगवान हैं। कभी तो कृष्ण यशोदा मैया के साथ और दूसरे सखाओं के साथ इस प्रकार से लीला करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं। परंतु जब जब आवश्यकता पड़ती है लीला शक्ति आकर उनको ज्ञात करा देती है कि प्रभु आप तो भगवान हैं, देखिए आपके सखा कहां जा रहे हैं। जब ये शक्ति ने सेवा करने के लिए कृष्ण को ज्ञात कराया, कृष्ण कहने लगे अच्छा तुम मेरे घर में आकर मेरे ब्रज में आकर मेरे सखाओं को इस प्रकार से तुम कष्ट दोगे। कृष्ण तुरंत ही सर्प के मुंह में प्रवेश कर गए। अगासुर ने सोचा ओहो ये तो बहुत अच्छा मौका मिल गया, आज मेरे को तो बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये तो स्वयं मेरे मुख में आ गया है। इसलिए अपने विष के द्वारा कृष्ण को उस समय समाप्त करने की चेष्टा करने लगे, मुख बंद करने लगा। परंतु कृष्ण अपने पराक्रम के द्वारा अपने बल के द्वारा उन्होंने अगासुर के मुख में ही उन्होंने ऐसा तेज दिखाया कि अगासुर वहीं पर समाप्त हो गया। ऐसा तेज कि तेज के द्वारा ही अगासुर व सर्प वहीं पर मर गया। सारे सखा लोग कृष्ण उनको कहने लगे चलो भाई बाहर चलो, बहुत गुफा में घूम लिया है, बहुत गुफाएं देख ली हैं, अब थोड़ा बाहर चलो। जब सब सखा लोग बाहर आने लगे एकमात्र कृष्ण ही भीतर रह गए। उस समय अगासुर की जो ज्योति जो आत्मा उनका उसका मस्तक फाड़ती हुई आकाश में प्रतीक्षा करने लगी कि कब कृष्ण बाहर आएंगे और जो आत्मा कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर जाए। जैसे कृष्ण अगासुर की जीवा से बाहर निकले वह ज्योति जो बहुत प्रकाशमान थी वह ज्योति आकर कृष्ण में प्रवेश कर गई। ये देखकर सभी देवता लोग जोर जोर से कृष्ण की जय जय कार करने लगे, बोलो कृष्ण कन्हैया की, कृष्ण कन्हैया की, बोलो कृष्ण कन्हैया की। देवता लोग जोर जोर से जय जय कार करने लगे और ब्रह्मा जी ये सोचकर बड़े विमुग्ध हो गए, ये क्या हो गया, एक साधारण सा व्यक्ति साधारण सा बालक जो अपने सखाओं के साथ खेल रहा है जो अपने सखाओं के साथ खेल रहा है और ये देवता लोग इनकी जय जयकार कर रहे हैं, ये क्या बात है। ब्रह्मा जी उस समय विचार करने लगे कि देखने में तो साधारण बालक सा लगता है परंतु इनकी और क्या क्या लीलाएं हैं, ये मैं तभी जान सकता हूं जब कुछ परीक्षा कर सकूंगा। इसलिए ब्रह्मा जी उनकी वहां परीक्षा करने लगे, उनका टेस्ट करने लगे। बोलते जब ये सखाओं के साथ खेल रहे होंगे तब मैं इनको चुराकर इनके सखों को चुराकर ले जाऊंगा, तब देखूंगा कि वास्तव में कोई बहुत श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है, कोई भगवान है। अगर भगवान है तो जान लेंगे और अगर नहीं है तो मैं समझ लूंगा कोई साधारण सा बालक है। कृष्ण अपने सखों के बीच में बैठे हैं,
ब्रह्मा जी ने देखा अघासुर की आत्मा प्रवेश कर गई।
बोले
उस समय वो समझ गए ये स्वयं भगवान है, अब कोई डाउट नहीं रहा। तब उन्होंने विचार किया उनकी कुछ और मधुर लीलाओं को देखूं। कैसे देखूं? तब उन्होंने उनके बछड़ों को और ग्वाल बालों को सबको चुरा कर रख दिया। ये जो किया ये अपराध हुआ। यदि फाके जहाँ हमको अपनी और लीलाएं दिखलाइए प्रतीक्षा करते तो अपने ही आप कृष्ण लीला दिखलाते। आगे बढ़ो।
तो गुरु जी बता रहे हैं
ब्रह्मा जी को कोई संदेह नहीं था ये भगवान नहीं, केवल वो लीलाएं देखना चाहते।
ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि के हिसाब से अपनी बुद्धि से सोचने चाहते थे, कृष्ण की और मधुर मधुर लीलाओं को दर्शन करना चाहते थे। इसलिए जब कृष्ण अपने सखाओं के बीच में बैठे हैं और बछड़े दूर जमुना जी में जल पीने गए, ब्रह्मा जी ने सोचा पहले मैं इन बछड़ों को ही यहाँ से चुरा लेता हूँ। क्वापि अदृष्ट अंतर्विपुना पुलिन अपि च वस्त्रपान उभे अपे वने कृष्ण विचिका समन्विता। ब्रह्मा जी सारे बछड़ों को लेकर गए, कृष्ण देख रहे हैं बछड़े अभी तक आए नहीं, सभी सखा लोग चिंतित हो रहे हैं बछड़े अभी आए नहीं। कृष्ण बोलते हैं आप लोग यहीं पर रुको, मैं बछड़ों को देखने जाता हूं। जब पुलिन पर आकर देखा तो बछड़े तो यहां नहीं है, कहां चले गए बछड़े। इसलिए तुरंत उसी समय उसी स्थान पर आए जहां पर अपने सखाओं के साथ बातचीत कर रहे थे, खा पी रहे थे। वहां पर देखा कि सखा भी यहां से गायब हो गए हैं। सोचने लगे पहले देखा तो बछड़े गायब हैं, अब आकर देखा सखा भी चले गए, ये क्या हो रहा है। बोलते इस समय कृष्ण कैसे हैं, भगवान की शक्ति के द्वारा मुग्ध हो गए हैं, यहां पर भगवत्ता प्रकाशित नहीं हो रही है, यहां पर विमुग्ध है। क्यों? भगवान की शक्ति यदि ऐसी लीला ना करे, भगवान को विमुग्ध ना करे तो लीला संपन्न नहीं हो सकती है। इसलिए इस समय कृष्ण उसी समय लीला शक्ति ने आकर फिर भगवान की सेवा करनी चाहिए। फिर भगवान को ये याद कराया कि प्रभु आप भगवान हैं, अपने अंतर्यामी गुण के द्वारा देखिए आपके सखा और बछड़ा कहाँ हैं। उस समय भगवान को ज्ञात हुआ ओ ये ब्रह्मा जी का काम है, ये ब्रह्मा का काम है। इससे कहने लगे कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। उसी समय सबके सामने तावत सर्वस्त्र पालन पश्चिम जस तत्ना व्यादृशन से घन श्याम पीत कोश वास। देखते देखते सबके सामने हा? अपने स्वरूप से ही वैसे के वैसे ही सखा, वैसे की वैसे ही बछड़े लकुटिया इत्यादि सब अपने स्वरूप से ही बन गए। और आज जैसे प्रत्येक दिन संध्या काल के समय अपने सखाओं के साथ बछड़ों के साथ वन से ब्रज में लौटते हैं, आज अपने स्वरूप के साथ ही ब्रज में लौट रहे हैं। ये पूरी लीला एक वर्ष तक चलती रही, ये कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। यहां तक कि कृष्ण के बड़े भाई बलदेव प्रभु भी इस लीला को समझ नहीं पा रहे थे और देखते ही देखते आश्चर्यचकित हो रहे थे बहुत हैरान हो रहे थे क्या हो रहा है। मैं प्रत्येक दिन देखता था कि जब कृष्ण संध्या काल में ब्रज से वन से लौटकर ब्रज में प्रवेश करते हैं, गोकुल में प्रवेश करते हैं, तो जितनी माताएं हैं ब्रज की, वह अपने पुत्रों से अधिक कृष्ण को स्नेह करती थी। हा? अपने पुत्र से अधिक कृष्ण को स्नेह करती थी, कृष्ण को स्नेह करती थी। जितने बछड़े थे वह सब जाकर अपनी मैया गैयाओं से जाकर मिलते थे, और जो गैया थी वह आज कैसी दिख रही हैं? बोलते अपने जो नए बछड़े हैं उनको तो दूध नहीं पिला रही हैं, जो एक साल पुराने बछड़े हैं आज उनको दूध पिला रही हैं। बलदेव प्रभु ये समझ नहीं सक रहे ये क्या हो रहा है। बोलते केम यह कुत अयाता देवी नारी उतासुरी चाहे मायस्तु में भ्राता न अन्य पे विमोहनी। वह ये कौन सी माया है? क्या ये कोई देवी माया है? क्या ये असुरिक कोई माया है? नहीं नहीं, ये मेरे भ्राता मेरे भाई की ही माया है। इसलिए बलदेव प्रभु तीन रस से कृष्ण की सेवा करते हैं, सख्य रस से, वात्सल्य रस से और दास्य रस से। तो चक्र ठाकुर जी बताते हैं जब बलदेव प्रभु इस प्रकार से कह रहे हैं प्राय मायास्तु में भ्राता ना अन्य पे विमोहनी, इस समय बलदेव प्रभु दास्य रस से कृष्ण को देख रहे हैं। इस प्रकार ये लीला चलती रही, ब्रज में ये प्रसिद्धि हो गई। ये वर्ष बड़ा ही शुभ है। गर्गाचार्य जी आकर भविष्यवाणी करने लगे कि इस वर्ष सभी गोप अपनी कन्याओं का विवाह अन्य अन्य गोपों से कर दे। अगर इस वर्ष में अगर अपनी कन्याओं का विवाह ना किया जाए तो फिर तो बहुत समय तक वर्षों वर्षों तक कोई योग नहीं है। इसलिए सभी गोपों ने, जो वृद्ध गोप है, सभी ने अपनी कन्याओं का विवाह उनके अनुकूल उनके गोपों से कर दिया। जो कन्याएं गर्भ में भी थी उनका भी विवाह इत्यादि पहले से तय कर दिया कि जब ये कन्या होगी तो आपके पुत्र से ही इसका विवाह कर देंगे। अब इस समय जो ब्रज में जितने गोप हैं वे कौन हैं? स्वयं कौन है? कृष्ण ही है। इसलिए ब्रज में जितनी कन्या हैं, जितनी गोपियां हैं, मूल रूप से देखा जाए तो सबका विवाह किसके साथ तय हुआ? कृष्ण के साथ ही हुआ। ये लीला श्रीमद् भागवत में वर्णित है और अधिकांश लोग भागवत गीताओं को नहीं पढ़ते हैं, इसलिए कृष्ण पे आरोप लगाते हैं कि ओहो कृष्ण गोपियों के साथ राज करते हैं, दूसरों की स्त्रियों के साथ राज करते हैं। परंतु अगर हम भागवत को पढ़ें, वैष्णव के मुख से गुरु जी के मुख से हरि कथा सुने तो हम तो समझ आता है कि वास्तव में गोपियों का विवाह किससे हुआ था? कृष्ण के साथ ही हुआ था। इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ये तो रस को और पुष्टि करने वाली लीलाएं हैं। इस एक वर्ष के अंदर अंदर इस प्रकार जितनी गैयां थी जो प्रत्येक दिन ये भावना रखती थी कि ओहो यदि कृष्ण हमारे बछड़े होते तो हम अपना स्तन कृष्ण को पिलाती, इसलिए उन गैयों की इच्छा भी आज कृष्ण ने पूरी की। क्योंकि जो बछड़े थे वह सारे कौन थे? तभी तो कृष्ण है। इसलिए वह कृष्ण सभी गैयों की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं, उनका स्तनपान कर रहे हैं और गैयां वास्तव में आस्वादन कर रही हैं। ब्रज की माताएं विभ गोपियां उनकी भी इच्छा थी कि कृष्ण यदि हमारे लाला होता तो हम भी कृष्ण को अपना स्तनपान कराती। तो आज उन सबकी इच्छा भी कृष्ण ने पूरी की, उन सबकी इच्छा भी आज पूर्ण हो गई। इसलिए एक कार्य करे प्रभु, करे पांच साल भगवान एक लीला के द्वारा पांच दस लीला एक साथ कर देते हैं, और उस लीला के अंदर ही, उस लीला के अंतर्गत ही बहुत सारे सिद्धांत तत्वों को प्रकाशित कर देते हैं। ऐसी मधुर ब्रज की लीलाएं हैं। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि इन सखाओं को तो मैं चुराकर, इन बच्चों को चुराकर मैं एक गुफा में बंद कर दिया था, अब देख रहा हूँ कृष्ण फिर उन्हीं सखाओं के साथ, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उन्हीं के साथ वन में बच्चों को चला रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ब्रह्मा जी भगवान को विमोहित करने आए थे परंतु यहाँ पर स्वयं ही विमोहित हो गए हैं। जिस प्रकार कामदेव कृष्ण को चैलेंज करने आए थे परंतु कृष्ण के मदन मोहन रूप स्वरूप को देखकर स्वयं ही मोहित हो गए थे, इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी यहाँ पर आए तो थे परीक्षा करने परंतु स्वयं ही यहाँ पर विमोहित होकर बैठ गए। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक से लौट कर आए, उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने उन्हीं सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये देखकर कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। कृष्ण को दिखाना चाहते थे कि देखो ऐश्वर्य क्या वस्तु होती है। इसलिए सबके सामने, ब्रह्मा जी के सामने जितने सखा थे, जितने बछड़े थे, उनमें ही अपने स्वरूप का दर्शन कराया, चतुर्भुज रूप में सबके सामने प्रकाशित हो गए। ब्रह्मा जी ये देखकर विमोहित हुए और सोचने लगे, ओहो आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध हो गया, साक्षात भगवान है, इनके चरणों में मैंने अपराध किया, इनके सखाओं को इनसे मैंने दूर किया, इनके बछड़ों से मैंने इनको दूर किया, अब मैं किस मुख से इनके पास जाऊं और कैसे इनसे क्षमा मांगू। कृष्ण ब्रह्मा जी की ओर देख रहे हैं,
अभी अभी आपने हमारे सर्वप्रथम गुरु जी के मुखार विंद से भगवान की मधुर लीला कथाएं सुनी तथा अभी ब्रह्म लीला की बातें आई हैं, और जिस प्रसंग को आप सुनते आ रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है, चतुर्मुख ब्रह्मा है, भगवान की मधुर लीलाओं को देखने के लिए आए, भगवान उस समय ऐसी माया विस्तार की जिनकी माया के द्वारा मोहित होकर के स्वयं ही सोचने लगे कि मैं बछड़ों को चुराया और सखाओं को चुरा करके कंदरा में रख दिया। एक वर्ष पश्चात जब लौट करके आए, उस समय कृष्ण फिर से सखाओं के साथ, बछड़ों के साथ खेल रहे, नाच रहे, गा रहे, तो ये सब देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, जबकि भगवान ने उनको केवल एक वासुदेव नहीं हजारों वासुदेव का दर्शन करा दिया, संपूर्ण विश्व विष्णुमय दिखा दिया, सभी लोग हाथ जोड़कर उनकी स्तव स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, जितने सखा और बछड़े हैं कृष्ण ही कृष्ण है, सभी कृष्ण बोले हैं, सभी अनंत सज्जा में सोए हुए हैं और सभी विष्णु स्वरूप है, देख देख करके ब्रह्मा तो ऐसे से चकित हो गए। उस समय बार बार सत्संग प्रणाम करते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगे। नौमी प्रभु से तड़िदम्बराय परिपेक्ष लसन मुखाय, हे इज्ञ, हे भुवन सुंदर, हे भगवान, आपके चरणों में हम पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करते हैं। भोजन में हमने बाधा डाली, उस समय सबकी वे भोजन कर रहे थे, उसी समय उन्होंने सखार बछड़ों को चुराया था, भी वे भोजन हाथ में लिए हुए ऐसे स्वरूप को वे बारंबार प्रणाम करने लगे। बोले कि हे प्रभु, आप हमारे हम जैसे एक बालक के अपराध को क्षमा कर दें। माता की गोदी में जैसा बालक होता है, हाथ पैर फेंकता है पर माता उसका अपराध नहीं लेता है, ऐसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमने गलती की है। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आपकी महिमा को कोई जान नहीं सकता, आप कैसे किस समय कब प्रकट होते हैं, कौन सी कैसी लीला करते हैं, ये हमारे समझ से बाहर है, चित्तमय है, आप स्वयं स्वतंत्र हैं, इसलिए हे प्रभु, आप तो मेरे नारायण, मेरे पिता, मेरे ईश्वर हैं, इसलिए आप हमारा अपराध क्षमा करें। उन्होंने प्रार्थना की कि अहोति धन्ना ब्रजगो रमन स्तन्ना मृतम पितम अतिवते मुदा जासाम तो बस परात्म जात्मना तृप्त अद्या पथनाल मद्दरा। अहो, ब्रज की जो गौवे हैं और माताएं, उनकी इच्छा अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए, जो कि अभी अभी गुरुजी ने बताया, ब्रज की एक फल बेचने वाली साधारण श्रेणी की एक महिला, जिनकी भावना को देखते हुए कृष्ण उनके गोदी में चढ़ गए और माँ कहकर के पुकार लिए, उनके सारे फल ले लिए और खाने पीने लग गए, खाने लग गए, नाचने लग गए। इस प्रकार ब्रज के जितने जो कोई भी हैं, सबके प्रति अनुग्रह करने वाले परम करुणामय भगवान की अद्भुत लीला है, जो प्रेम के दे
कुंडल सोहे रहे, अरे गल बल जंती लाल हो माल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, अरे गल बल जंती माल हो माल, तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रहे, तेरे मुख पे मुरलिया, तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रहे, तेरे मुख पे मुरलिया सोहे रहे, थोड़ी से थोड़ी से हीरा लाल हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, थोड़ी से हीरा लाल, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे अंग में जामा केसरिया, हाँ अंग में तेरे अंग में जामा के सरिया, तेरे हो तेरे अंग में जामा के सरिया, अरे पटका हाँ अरे पटका लाल गुलाल लाल तेरे माथे मुकट विराज रहो अरे पटका लाल गुलाल हो गुलाल तेरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तोते पान चढ़े और फूल चढ़े तोते तोते पान चढ़े और फूल चढ़े तोते दिए तोते दिए चढ़े तेरे माथे मुकट विराज रहो कर दिए चरे दिन रात श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो श्री गोवर्धन गंगा निकट बहे तेरी मानसी गंगा निकट बहे तो चरे चरे तो चरे महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो श्री गोवर्धन तेरी साज कोश की परिक्रमा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकट विराज रहो
मैया के पास में गए सवेरे पूछा जी मैया आज क्या मेरा जन्म दिवस है तुम पूरी पकवान हलवे महन भोग खीर इत्यादि बना रही हो क्या बात है किस लिए कर रही यशोदा मैया ने उसको उनको कृष्ण को भगवान को फटकार दिया अभी समय नहीं है कृष्ण अब क्या करते, अपने पिताजी के गोदी में आकर के बैठ गए। बोले पिताजी आज मैया तो बड़ी बड़ी पकवान बनवा रही है और तरह तरह की मिठाई बन रही है, आज क्या हमारा जन्मदिवस है? तो नहीं तो बलदेव जी का जन्मदिवस है, किस लिए बन रहा? नंद बाबा ने कहा कि आज इंद्र की पूजा होगी, इसके लिए मैया ने ब्रज में जितनी भी ब्रजवासी लोग हैं अपने घरों में सैकड़ों मन पूरी खीर लड्डू सब बनाएंगे, मालपुआ बनाएंगे और इंद्र जी की उससे पूजा होगी। बाबा क्यों इंद्र की पूजा होगी? अभी कृष्ण छोटे से बालक हैं। क्यों? उन्होंने कहा जी देखो इंद्र कृपा करके जब जल बरसाते हैं, वर्षा करते हैं तो घासें होती हैं, उसे पशु चरते हैं, उसे खाते हैं, गैया खाती है, दूध देती है, पानी बरसता है, समस्त प्राणी मात्र उससे पलते हैं, पानी के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इंद्र की पूजा करना जरूरी है, इसलिए हमारे पुरखे लोग करते आए, इसलिए हम भी करेंगे। कृष्ण ने कहा जे बाबा यहाँ पर इंद्र की पूजा नहीं होती, वहां पर वर्षा नहीं होती। तो बाबा नंद बाबा कुछ चक्कर में पड़ गए कि वहां भी तो वर्षा होती है। कहा जे जहां पर नहीं इंद्र की पूजा होती वहां भी तो वर्षा होती है, वहां पर तो सब लोग जीवित रहते हैं। इंद्र की पूजा से तात्पर्य नहीं, इंद्र पानी नहीं बरसाता है, हमारे गिरिराज जी गोवर्धन जी बरसाते हैं, बादलों को रोक लेते हैं और बादलों से पानी बरसता है और गिरिराज जी की कृपा से घासें हरी भरी रहती है, फसल उगती है, चावल दाल गेहूं इत्यादि सब होते हैं, सरोवर में पानी स्वच्छ हो जाता है, हम लोग उसको पीते हैं, गैया पीती हैं। इंद्र की पूजा की क्या जरूरत है? यदि पूजा करनी है तो गोवर्धन की क्यों नहीं पूजा की जाए? तर्क वितर्क ऐसे किए जैसे नंद बाबा जी पलट गए, अच्छी बात है। तो आज हम लोग इंद्र की पूजा के बदले में ही गोवर्धन की पूजा करें, ऐसा कर करके जो भी बजवा दिया ब्रज भर में कि आज हम लोग इंद्र की परंपरा से पूजा कर रहे हैं अब तक, किंतु आज हम गिरिराज जी के तलहटी में जाएंगे, वहीं पर गैयों की पहले पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, गुरु की पूजा करेंगे, फिर गोवर्धन की अन्नकूट लगाएंगे और फिर इसके बाद में गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। सब लोग गाड़ियों में छक्कड़ों में भर भर कर मालपुआ खीर इत्यादि लगे पूड़ियों की और कचौड़ियों की मालपुओं की पहाड़ ये सब बन गए, खीर और क्या क्या सब उसे तालाब भर दिए। उस समय में कैसे पूजा हुई और कैसे गिरिराज जी ने गोवर्धन उस पूजा को ग्रहण किया, अभी श्रीमान माधव महाराज जी कुछ
बतलाएंगे।
अरे ये ले हरे कृष्ण। जब नंद बाबा ने
पूरा ब्रज में घोषणा कर दिया कि आज हम इंद्र पूजा न करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। जब राजा अनाउंस करते हैं तो प्रजाओं को राजा की बात मानना ही पड़ती है। ये सब ब्रजवासी तैयार हो गए, सब लोग अपने चक्रों में भर करके पूरी कचौड़ी मालपुआ और बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन में खीर मक्खन लेकर के तलहटी पर पहुंच गए और रख करके और कृष्ण भोग लगा रहे हैं, नंदोवा भोग लगा रहे हैं। जब भोग लगाया कृष्ण ने क्या किया, अपने एक स्वरूप में गिरिराज जी बन करके गिरिराज के ऊपर चढ़ गए और कह रहे आनो रे आनो रे, और ले आओ और ले आओ, दोनों हाथ से दौड़ कर सब खा गए। कृष्ण ने सरदय का पानी पी गए, जो इतना खीर बनाया था, जो खीर बनाया था अभी बहुत बड़े बड़े कुंड में था, अभी पी गए, खा लिया खीर भी, कुछ बचा नहीं रहा। तो किसने बताया, हे गिरिराज जी, हम तो गरीब गोप हैं, हम तो स्वर्ग में कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप संतुष्ट हो जाइए। सब गिरिराज ने बेकार दिया, बता तृप्त अस्मी तृप्त अस्मी। जब गिरिराज ने बताया तृप्त अस्मी तृप्त अस्मी, तब क्या हुआ, जब गिरिराज जी तृप्त है तो सब जगह तृप्त हो जाते हैं। इसके बाद कह रहे हैं परम गृही परम गृही, कुछ बर मांगो बर मांगो। तो क्या बर मांगते हैं, हम लोग होते तो अपने संसार के बारे में कहते कि मेरा लाला ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, मेरा पत्नी ठीक रहे, नौकरी हो जाए, बिजनेस ठीक चल जाए। तो ये ब्रजवासी लोग ऐसे कुछ नहीं कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं नंद के लाला यशोदा दुलाला ठीक रहे, उसके प्रति एक के बाद एक विपद आ रही है, ऐसे नाम ठीक से रहे। ये मस्तु ये मस्तु यही होगा यही होगा। किसी ने पूछा बाबा आप लोग इंद्र इतने दिन से इंद्र की पूजा कर रहे हैं, कभी इंद्र ने दर्शन दिया, सब ब्रजवासी नहीं तो देखिए तो गिरिराज कितने दयालु हैं, ऐसे उन्होंने दर्शन दे दिया और सभी लोग बर मान लिया। जब गिरिराज देखा दिया जैसे सब था सब पहले ही ऐसे ही पूरा भर गया। और जब हम हरिदेव के दर्शन करते हैं गिरिराज जी में, हमारे गिरिधारी गौरव मठ के पास में ही है, जो लोग अभी गोवर्धन दर्शन नहीं किया हो वो लोग आए, हमारे मठ में रहने की व्यवस्था भी गुरु जी कर रखा है, फसल की व्यवस्था है, उधर ठहरे और हरिदेव का दर्शन करें और गिरिराज जी की परिक्रमा करें। तो हरिदेव जहाँ पर है वहीं पर कृष्ण ने गिरिराज को उठाया था। तब इधर हुआ क्या, इंद्र ने देखा अरे कितने भीड़ हो गए, एक छोटा सा बच्चे को कहने पर मेरा पूजा बंद कर दिया, जो कितने पुरुषों से करते हुए आ रहे थे, ठीक है आज मैं ब्रजवासी का मजा चखाता हूँ, आज मैं सबका पूरा दूंगा, क्या पछता है मुझको, मैं देवता को राजा हूँ, मेरे हाथ में वज्र है, वैरावत बस्ती है, लोग मुझे कुछ गिनते नहीं, ठीक है आज उनको मैं कुछ माफ निकाल दूंगा। अब क्या किया इंद्र ने, अपने संवत्सर में को बुलाया, संवत्सर में यानी जब ब्रह्मा में प्रलय होता है उसमें हाथी के सूर जैसे मोटे मोटे बारिश गिरती है, तुमको बुलाया बोला जाओ ब्रज को बहा दो। बारिश शुरू हो गई, अब ब्रजवासी करे क्या, त्राही 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 कर रहे हैं। तो कृष्ण का क्या बताया, हे कृष्ण तुम्हारे कहने से हम लोग इंद्र पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा की, अब देखो हमारा अवस्था क्या हो रहा है। इसने बताई छोटी सी बात के लिए हमें इतना चिंता कर रहे हैं, हमने गिरिराज की पूजा करी, हम गिरिराज के पास ही जाएंगे, हम ये शरण देंगे। तो ब्रजवासी लोग सब अपने पशुओं को लेकर के गिरिराज तलाटी पे आ गए। किसने क्या किया, एक कनी अंगुली से बाएं हाथ से गिरिराज को उठा लिया, कि छोटे से बच्चा एक फूल को या एक कलम का भाग में क्या वजन लगता, कुछ नहीं लगता है, ऐसे उनको उठा लिया। और इधर हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और गुरुवर्ग कहते हैं पुरुषों का बल होता है सीधा हाथ में और नारियों का बल उल्टा हाथ में, तो कृष्ण ने सीधा हाथ में उठा करके उल्टे हाथ में क्यों गिरा उठाया, कल ही नहीं इस पर भी इसके सबसे बाएं शक्ति अंगुली से उठाया, क्यों कृष्ण के बाएं शक्ति विराजमान रहती है, कृष्ण तो इच्छा करते हैं राधा जी उनकी इच्छा को पूरा करती हैं। कृष्ण के बाएं के बाएं भाग में कौन है? राधा जी। उन्हीं के शक्ति से कृष्ण को गिरिधर ने गिरिराज उठाया और समस्त ब्रजवासी सब आमने सामने आ गए। अब इतने दिन के बाद गोपियां कृष्ण के आमने सामने आई। इससे पहले गुरुजन के डर, माता पिताओं का से लज्जा हम नहीं सकते थे कोई भी। अब कोई विपद हो उस समय कोई लज्जा की बात नहीं है, उसमें जेठ भी गौ के साथ में रह सकते हैं, सब भी कोई चिंता की बात नहीं है। और सखाओं ने सोचा अरे कृष्ण अकेला कैसे धारण करेंगे, वो लोग लाठी चिका दिया। और गोपियां दूर से देख रही हैं, गिरिराज जी तुम फूल जैसे हल्का हो जाओ और गिरो के तुम चकना चूर कर देंगी। कैसे गोपियां अपने आंखों से गिरिराज को टांग के रख दिया। और इन तो बारिश बरसा रहे और वज्र छोड़ रहे हैं। और उधर हुआ क्या, हमारे मठ के पास ही है एक स्थान है चकलेश्वर महादेव। शिव जी ये तो विभिन्न प्रकार के वर्णन है। शिव जी क्या किया, अपने त्रिशूल को उठा करके चक्र से घुमाने लगे और ध्वज में बारिश आया ही नहीं। और किसी शास्त्र में वर्णन है जब ध्वज में ऐसे बारिश हो रही थी तो सुदर्शन चक्र आकर के गिरिराज के ऊपर छा गए, बारिश पानी को आने ही नहीं दिया। उस चक्र को देख करके की स्तुति करने लगे, इसे नाम चक्रेश्वर महादेव हुआ। सात दिन बीतने के बाद इंद्र ने बताया अपने दूतों को, अब जाकर के देखो तो सही अभी कोई ब्रज में जिंदा है या सब समस्त बन गया है। आके देखा ब्रज का एक पत्ता भी गिरा नहीं, सब तो जैसे मौज मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, गिरा के पलट ऊपर सब कुछ उत्सव मना रहे हैं। जाके बोला इंद्र को, हे राजन उन्होंने तो एक पेड़ का पत्ता भी गिरा नहीं, अरे आप क्या बजरे कछुमार निकाल के चक्का क्या छुड़ाएंगे। इंद्र को लगा डर, ओहो मैं तो सोचा साधारण बालक है, ये नंद के छोकर ही क्या है, सब भगवान तो नहीं है। अब तो उनको नानी मरी, क्या करे अब यदि जाऊं सीधा सीधी से उनके पास जाऊं क्षमा तो करेंगे नहीं, क्या किया जाए। सोचने लगे ये तो राजा ना बुद्धि तो रखते ही है, तो चतुर थे ही, किसी को गोचारण करते हैं, गोमाताओं का सम्मान करते हैं, क्यों ना किसी गोमाता को लेकर के उनके पास जाकर क्षमा मांगू। ले शिवी का गोमाता को लेकर के कृष्ण के पास आए, आकर के क्षमा मांगा। कृष्ण क्षमा तो नहीं करते, चूंकि सुरभी माता को ले आए इसको देख करके कृष्ण का दिल पसीज गया और उनको क्षमा कर दिया। ऐसे ब्रज में ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ब्रजगोपियों की इच्छा थी हम कृष्ण के आमने सामने आए और कृष्ण को भी इच्छा थी हम उनको सामने से देखें। ये इच्छा करने के कारण कृष्ण ने ऐसे इंद्र के पुत्री को जगमा के साथ भ्रमित करके उनको ऐसे करवाया और अपने अपराध के कारण इंद्र क्षमा भी मांगा, अश्रुवि के कारण उनको क्षमा भी कृष्ण ने कर दी। अब उस दूसरे दिन से हिलाए हैं, हम लोग कल गुरु जी का सिंह का सवन करेंगे। गिरिराज गोवर्धन की जय, ब्रज मंडल की जय, ब्रज मंडल परिक्रमा की जय, संत राम की जय, श्री गुरु महाराज की जय, शेर प्रमानंदे हरि हरि बोल।
कृष्ण गिरिराज जी की पूजा कराई, इंद्र को अभिमान था जो मैं ही जगत का मालिक हूँ, उनके घमंड को चूर कर दिया। और कृष्ण अपने बच्चे के रूप में वहाँ पर खड़े रहे और गोपों को दिखलाया कि देखो गोवर्धन वहाँ पर खड़े हैं। एक स्वरूप से कृष्ण ही रहे और दूसरे स्वरूप से अपने ही गिरिराज जी के ऊपर में गिरिराज बन गए और लोगों से बोले देखो तो गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हो, इंद्र ने कभी दर्शन नहीं दिया, गिरिराज जी का दो स्वरूप है, एक है भक्त स्वरूप यहाँ पर कि कृष्ण सब अपनी लीलाओं को करते हैं भक्त के रूप में, कुंजों में भी लीलाएं करते हैं पहाड़ बनकर जिससे कि गोपियों को कोई लज्जा नहीं रहे। वहाँ पर प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे कंदर और उनकी सब लीलाएं होती हैं, जो जिसको दर्शन ब्रह्मा शंकर इत्यादि के देखे पुष्कर है। ऐसे कृष्ण वहाँ पर
उनकी गोवर्धन में लीला करते हैं, इसलिए वो भक्त है। गोपियों ने भी इनको हरिदास वर्ज, समस्त सेवकों में इनको श्रेष्ठ बतलाया है गिरिराज जी को। और दूसरा स्वरूप है गिरिराज जी की शिला की यहाँ पर पूजा देख रहे हैं, सब जगह जगत में उनकी शिलाओं का पूजन करते हैं, उनको कृष्ण रूप मान लेते हैं, कृष्ण रूप से उनकी पूजा करते हैं। और राधिका जी उनके साथ में वो जो लाल लाल दाने वाली गुंजा माला उनके पास में रख देते हैं, वो राधा जी का स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु जी को कोई वैष्णव वृंदावन से एक गोवर्धन की शिला गुंजा माला ले गया, महाप्रभु जी कभी उसको शिला को अपने सिर पर रखते, कभी आंखों के आंसुओं से नहला देते, कभी भावाविष्ट हो जाते। कुछ दिनों के बाद में उन्होंने रघुनाथ दास जी को वही शिला और गुंजा माला दे दी, बोले कि तुमको अधिक प्रयास नहीं करना है, एक मिट्टी के पात्र में कुंजा कहते हैं, उसका पानी और तुलसी, बस इनको भोग लगाना, भाव सेवा करना, गिरिराज जी को कृष्ण देखना और गुंजा माला को राधिका जी, इसी भावना के अनुसार में तुम पूजा करना। ये तो एक भाव। और बहुत से लोग हैं जो गिरिराज जी को कृष्ण का परम प्रिय भक्त मानते हैं, और उसी रूप में भक्त मानने से कुछ अधिक लाभ होता है, भगवान माना जाए तो कम होगा। कृष्ण हमको दे सकते हैं कुछ, सब कुछ नहीं दे सकते, उनमें एक चीज नहीं है, वो तो भोगता है, भोग करते हैं, और गोपियां उनको भोग कराती हैं, उनकी प्रेममयी सेवा करती हैं। तो यदि कृष्ण की सेवा चाहिए तो गोपियां दे सकती हैं, राधा जी दे सकती हैं, कृष्ण इसको नहीं दे सकते, कृष्ण और सब कुछ दे सकते हैं, अपनी प्रेममयी सेवा नहीं दे सकते हैं राधे। तो विद्या जी से प्रार्थना करने कैसे, ये कृष्ण की प्रेममयी सेवा को प्रदान कर गोपियों का भाव जीव को दे सकते हैं, इसलिए भक्त रूप में ही उनकी पूजा वांछनीय है। गौ प्रेमानंद
हरि हरि वो
महामंत्र
गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभी आप लोग जितने भी लीलाएं, जो सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की हुई है, जो ब्रज में हुई है, वृंदावन में हुई है, ब्रज को चौरासी मंडल में हुई है, ये सारे सुंदर लीलाएं सारे इसी ब्रज को चौरासी मंडल में मथुरा वृंदावन नंदगांव बरसाना जहाँ पर हुई है, और वो स्थान अभी भी वहाँ पर है जहाँ पर भगवान के चरण चिन्ह है, बहुत सारी अभी ऐसे स्थान है जहाँ पर वहाँ पर निशान है। तो गुरुजी हर साल वहाँ पर ब्रज को चौरासी मंडल की परिक्रमा आयोजित करते हैं जो हर साल होती है, इस साल भी वही ब्रजमंडल परिक्रमा 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक, क्षमा कीजिए 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आयोजित हो रही है। यदि किसी को भी थोड़ा सा इन कथाओं सुनकर जिन्होंने भागवत सुना है थोड़ा सा भी लोभ हुआ है, वो इन स्थानों पर दर्शन करना चाहते हैं, तो आए अवश्य इस यात्रा में हमारे साथ आ सकते हैं, हम उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। आपके पास में हमारा श्री गुरु जी का मठ है, वहाँ पर श्री गोविंद जी गौड़िया मठ है जो लैन नंबर 5 और हाउस नंबर 2 में है। तो यदि कोई भी जाना चाहता है, जाना चाहती है, तो वो हमसे संपर्क करें, ये टेबल हमारे पास है, हम अभी उसको सारा इसका विवरण दे सकते हैं। दूसरी बात, और परिक्रमा में आए और वह सब इतने सारे स्थलों का दर्शन करें, और जहाँ पर पूरे विश्व के लोग, हजार हजार देशों के वहाँ पर लोग भक्त एकत्रित होते हैं और गुरु जी के साथ परिक्रमा में चलते हैं। दूसरी एक सूचना है, आज का जो प्रोग्राम है वो बड़ा मंदिर रोड़ी छपड़ी में है, जहाँ पर बड़ा मंदिर है वहीं पर रोड़ी छपड़ी न्यू कार्ड में है, सात से नौ बजे तक अभी वहाँ पर शुरू होगा। दूसरा, ये भगवत पत्रिका के बारे में हम बता रहे हैं, कोई भी इसकी सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं वो हमसे टेबल पर संपर्क करें और इसकी सदस्यता प्राप्त कर दे। जितने सुंदर लीलाएं हुए इनमें वर्णन होते हैं और बहुत सारे भगवान के बारे में बताया जाता है इस छोटी सी पत्रिका में। आप सब लोग इसकी सदस्यता प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तेरी मुरली पे
नाउ गुरुजी इज लिविंग।
Okay.
Do you want to continue to hear this bhajan?
No, I think we can end here. Thank you so much, Prabhu.
Okay, tomorrow you will be calling once again?
Yes, is tomorrow the last day?
Yeah, tomorrow is the last day of this program.
Okay, so then I'll call you like around 7 o'clock tomorrow morning.
Okay.
Thank you so much, Prabhu.
I could not hear that the connection was distant for a while in between, because I was busy writing some matter for the press that has to go to the press. So I'm extremely sorry for that.
No problem.
I cannot provide that continuity.
Andavat Pranams, we're trying to get India again. Please bear with us. We're trying to get India. Please bear with us. Then the Vapranams, it appears that we can't get a hold of India right now to continue the webcast, so we'll end here. If you want to check back in 5 or 10 minutes, I might be able to make contact again. Sorry, we heard Srila Gurudev. Jai Srila Gurudev, Kartik Rat Ki Jai.